जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ, ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग।
ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण सर्ग 81। सूर्य ने अपने सारथी से कहा, हे सारथी, विंध्याचल पर्वत की कंदरा में वीतहव्य मुनीश्वर का शरीर दबा पड़ा है, उसको तू जाकर निकाल दे। तब अरुण नामक सारथी ने, जिसका शरीर हाथी के समान है, विंध्याचल पर्वत में आकर नखों से वह शरीर निकाला। उसके नख ऐसे थे जिसे वह पहाड़ उखाड़ा डाले। उन नखों से धरा कोटर में गड़े हुए उस शरीर को उसने निकाला। जैसे सारस कमल तंतु यानी मृणाल तंतु को कीचड़ से निकाल लेता है, तैसे ही पर्वत की कंदरा से उस शरीर को निकाल डाला। तब मुनीश्वर ने पुर्यष्टका से उस शरीर में प्रवेश किया। जैसे पक्षी आकाश मार्ग में उड़ता उड़ता आलय में आ प्रवेश करें। सावधान होकर अरुण को नमस्कार किया और अरुण ने भी वीतहव्य को नमस्कार किया और अपने अपने कार्य की ओर हुए। अरुण तो आकाश मार्ग को गया और मुनीश्वर का शरीर कीचड़ से भरा हुआ था, इससे उसने तालाब पर जाकर डुबकी मारी। और जैसे हाथी मल धोता है, तैसे ही स्नान करके संध्या आदि कर्म किए और सूर्य भगवान का पूजन किया। जैसे प्रथम तप से शरीर शोभता था, तैसे ही भूषित किया और मैत्री समता सत मुदिता आदि गुणों से संपन्न होकर ब्रह्म लक्ष्मी से सुशोभित हुआ और सबके अंग से रहित भी रहा कि इन गुणों को भी स्वरूप में स्पर्श न करे और आपको शुद्ध स्वरूप जाने। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार जब कुछ दिन व्यतीत हुए, तब समाधि के निमित्त मुनीश्वर का मन उदय हुआ और विंध्याचल पर्वत की कंदरा में जा बैठा। पूर्व जो विचार अभ्यास किया था और परावर परमात्म दृष्टि हुई थी, उससे फिर चित्त को कहा कि हे चित्त और इंद्रियों, मैंने तुम्हारा पूर्व प्रहार कर छोड़ा है, अब तुम्हारे अचित्त में अर्थ अनर्थ कोई नहीं, क्योंकि अस्ति नास्ति कलना मेरी नष्ट हुई है। अस्ति नास्ति के पीछे जो शेष रहता है उसमें स्थित हो। जैसे पहाड़ का श्रृंग अचल होता है, तैसे ही अचल हो, सदा उदय रूप आत्मा किनाई स्थित हो और सदा ज्ञान स्वरूप प्रकाशवान हो। असत किनाई इस प्रकार कि सदा अक्रिय रूप हो और असत रूप उदय किनाई स्थित हो। असत इस प्रकार से मन इंद्रियों का विषय नहीं और उदय किनाई इस कारण से कि सबका साक्षी भूत हो और सदा समरस प्रकाश रूप अपने आप में स्थित हो, प्रबुद्ध और सुषुप्त विषय स्थित हो। प्रबुद्ध इस कारण कि जो इंद्रियों के विषय की उपलब्धि करता हूं और सुषुप्ति इस कारण कि हर्ष शोक इष्ट अनिष्ट से रहित और जगत की ओर से सुषुप्तिवत समाधि में स्थित हो और स्वरूप में जागृत हुआ तुरियापद आत्म तत्व में स्थित हो। जैसे किसी स्थान में खंभ स्थित होता है तैसे ही स्थित रूप नित्य शुद्ध समान सत्ता जो आत्मपद है वहां में निरामय स्थित हूं। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार ध्यान करता हुआ वह मुनीश्वर ध्यान में लगा और 6 दिन तक ध्यान में रहा और फिर जगा तो उस काल को क्षण के समान जाना, जैसे सोया हुआ क्षण में जागे। इसी प्रकार वीतहव्य शुद्ध पद को प्राप्त हुआ और जीवन मुक्त होकर चिरकाल पर्यंत विचरता रहा। न कोई वस्तु से हर्ष दे और न शोक दे, चलता हुआ भी स्थित रहे और इंद्रियों का व्यवहार करता भी इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में सम रहे, कदाचित किसी से चलायमान न हो। वह चलता बैठता मन और इंद्रियों से कहे, हे इंद्रियो मरो, हे मन अब तो सम्मान हुआ है और आत्मा को पाकर अब देख तुझको क्या सुख है। जिस सुख के पाए से और पाने योग्य कुछ नहीं रहता वह निरोग सुख है। ऐसा जो परम शांत रूप अचल सुख है जिसका आश्रय करके चंचलता को त्याग और हे इंद्रियों तुम्हारा वास्तव में कुछ स्वरूप नहीं और आत्मपद में तुम दृष्टि नहीं आती, अपने स्वरूप के जाने बिना तुम मुझको दुख देती थी, अब मैं अपने स्वरूप को प्राप्त हुआ हूं और अब तुम मुझे वश नहीं कर सकती क्योंकि तुम अवस्तु रूप हो, आत्मा के प्रमाद से तुम्हारा भान होता है। जैसे रस्सी में सर्प भासता है तैसे ही आत्मा में जो अनात्म भावना और अनात्मा में आत्म भावना होती है सो अविचार से होती है और विचार किए से नहीं होती। अब विचार करके यह भ्रम निवृत्त हुआ है। तुम इंद्रियगण और हो, अहंकार और है, ब्रह्म और कर्तृत्व और है, भोक्तृत्व और है, और का दुख आप में मानना यही मूर्खता है। जैसे वन की लकड़ी और है, बांस और है, चर्म और है, जिससे रथ बनता है, और लोहा पीतल और कड़े जिससे रथ जड़ा जाता है, सो सब भिन्न भिन्न है, और बैल जो रथ को चलाता है सो भी जुदा है। इन सब से रथ बनता है और जैसे गृह का आकार होता है तैसे रथ है, उसमें बैठने वाला पुरुष भी और होता है और रथ की सामग्री परस्पर भिन्न होती है। तो यदि उसमें बैठने वाला कहे कि मैं रथ हूं तो नहीं बनता, तैसे ही शरीर रूपी रथ अज्ञान से मिला है, इंद्रिया और है, मन आदि और है, उसमें पुरुष है सो जीव है। यदि जीव कहे कि मैं शरीर हूं तो बड़ी मूर्खता है, उस शरीर के सुख दुख मूर्खता से आपको मानता है। जो विचार करके देखो तो राग द्वेष के क्षोभ से मुक्त हो। मैंने अविचार को दूर से त्यागा है और स्वरूप की स्मृति स्पष्ट की है कि आत्म तत्व सत है, उसी को मैंने सत जाना है और अनात्मा असत है उसको असत जाना है। जो सत है वह स्थित है, जो असत है वह क्षीण हो जाता है। हे राम जी, इस प्रकार वीतहव्य मुनि विचार करके जीवन मुक्त हुआ और अपने स्वरूप में बहुत वर्षों को व्यतीत किया। निर्भय पद में चित्त आदि भ्रम सब नष्ट हो जाते हैं। ऐसे शुद्ध पद को प्राप्त हुआ वह यथाभूतार्थ आत्मध्यान में स्थित हुआ और ग्रहण और त्याग की कुछ भावना न रही, परिपूर्ण आत्मपद को प्राप्त हुआ। अगस्त्य मुनि का पुत्र वीतहव्य मुनि उस पद को पाकर निर्वासनिक हुआ। फिर जिस काल में और जिस प्रकार से वह विदेह मुक्त हुआ है वह भी सुनो। 20,700 वर्ष वह जीवन मुक्त रहकर फिर विदेह मुक्त हुआ। जो इच्छा अनिच्छा से रहित पद है और जन्म मरण का जिसमें अंत है, उस राग द्वेष से रहित पद को प्राप्त हुआ। हे राम जी, फिर उसने हिमालय पर्वत की कंदरा में प्रवेश किया और पद्मासन बांध हाथ जोड़कर कहा, हे राग, राग तुम निरागता और निर्देशता को प्राप्त हो। तुम्हारे साथ मैंने चिर पर्यंत विवेक से रहित क्रीड़ा की है, तुम अब जाओ, मेरा तुमको नमस्कार है। हे भोग, तुम्हारी लालसा से मुझको परम पद का विस्मरण हो गया था। जैसे माता सुख के निमित्त पुत्र की लालसा करती है, तैसे ही मैं सुख जानकर तुम्हारी लालसा करता था। अब तुम जाओ, तुमको मेरा नमस्कार है। अब मैं निर्वाण पद को प्राप्त होता हूं। हे दुख, तुमको भी नमस्कार है। तेरे उपदेश से मैं आत्मपद को प्राप्त हुआ हूं, क्योंकि मैं सदा भोग और सुख चाहता था, और जब सुख प्राप्त होता था तब मुझको भी साथ ले आता था। सुख से तेरी उत्पत्ति होती है। सुख की लालसा में तो मैं अनेक जन्म पाता रहा, पर जब सुख आवे तब मुझको भी साथ ले आवे। तुझको देखकर मुझको आत्मपद की इच्छा उपजी और तेरे प्रसाद से मैं परम शीतल पद को प्राप्त हुआ हूं। हे दुख, तू तो दुख था, परंतु मुझको आत्मपद प्राप्त कराया, इसे तेरा कल्याण हो। तू अब जा। हे मित्र, संसार में जीना असार है। जिसका संयोग होता है उसका वियोग भी होता है। तूने मेरे साथ बड़ा उपकार किया कि अपना नाश किया और मुझको सुख प्राप्त कराया, क्योंकि जब तू मुझको प्राप्त न था तो मैं आत्मपद के निमित्त कब यत्न करता था। तूने अपना नाश करना माना, परंतु मुझको सुख प्राप्त कराया। हे मित्र, तू बांधो कि नाई चिरकाल पर्यंत मेरे साथ रहा, कदाचित मुझसे दूर न हुआ। मैंने तेरा नाश नहीं किया, पर तूने अपना नाश आप ही किया है। तू मुझको जब प्राप्त हुआ था तब मुझको विवेक उत्पन्न हुआ, उस विवेक ने तेरा नाश किया, इससे तुझको मेरा नमस्कार है। और हे माता तृष्णा, तुझको भी नमस्कार है। तू सदा मेरे साथ रही है और कदाचित त्याग नहीं किया। जैसे अपने बालक का त्याग माता नहीं करती, तैसे ही तूने मेरा त्याग नहीं किया। अब तू जा। हे कामदेव, तुझने आप ही विपर्य होकर अपना नाश किया। जब तू बहिर्मुख था तब जीता था, और जब अंतर्मुख हुआ तब तू मिट गया। तुझको नमस्कार है। हे सुकृतो, तुमको नमस्कार है। तुमने भी बड़ा उपकार किया कि नरकों से निकालकर स्वर्गों में डाला, परंतु अंत में सबका वियोग होना है, इससे तुम भी जाओ। हे दुष्कृतो, तुम भी जाओ। विकर्म रूपी तुम्हारा क्षेत्र है और युवा अवस्था बीज है, उससे दुख फल होता है। तुम्हारे साथ भी संयोग हुआ था, इससे तुमको नमस्कार है, तुम भी जाओ। हे मोह, तुमको भी नमस्कार है। तुझसे चिरकाल में बंधा था और नाना प्रकार के स्थानों को प्राप्त होता था और तू भय दिखाता था, उससे मैं भय पाता था, इससे तुझको नमस्कार है, अब तू जा। हे गिरी कंदरा, तुझको भी नमस्कार है। तुम में मैंने चिरकाल तक तप किया है। हे बुद्धि, हे विवेक, तुमको भी नमस्कार है। तुमने मेरे साथ उपकार किया है कि संसार बंधन से मुक्त किया, तुम भी जाओ। दंड और तुम्बा, तुमको भी नमस्कार है, तुम भी जाओ। बहुत काल तुम भी मेरे संबंधी रहे हो। हे देह, रक्त मांस का पिंजर होकर तू मेरे साथ बहुत काल तक रही है और तूने उपकार किया है। विवेक उपजाने का स्थान तू ही है। तेरे संयोग से मैंने परम पद पाया है, तू भी अब जा, तुझको नमस्कार है। हे संसार के व्यवहारों, तुमको भी नमस्कार है। तुम्हारे में मैंने बहुत क्रिया की है। ऐसा पदार्थ जगत में कोई नहीं जिससे मैंने व्यवहार न किया हो। ऐसा कर्म कोई नहीं जो मैंने न किया होगा, और ऐसा देश कोई नहीं जो देखा न होगा। अब सबको नमस्कार है। हे इंद्रियों, प्राण और मन आदि, तुमको नमस्कार है। तुम्हारा हमारा चिरकाल संयोग था, अब वियोग हुआ, क्योंकि जिसका संयोग होता है उसका वियोग भी होता है, इससे तुम्हारा हमारा भी वियोग होता है। नेत्रों की ज्योति सूर्य मंडल में जा लीन होगी, घ्राणों की गंध पृथ्वी में लीन होगी, और प्राण त्वचा पवन में, श्रवण आकाश में, मन चंद्रमा में और जिह्वा रस में लीन होगी। इसी प्रकार सब अपने अपने अंश में लीन होंगे। जैसे लकड़ियों के जले से अग्नि शांत हो जाती है, शरद काल में मेघ शांत हो जाता है, तेल से रहित दीपक निर्वाण हो जाता है और सूर्य के अस्त हुए प्रकाश शांत हो जाता है, तैसे ही मन आदि शांत हो जाएंगे। हे रामचंद्र जी, ऐसे विचार करते करते उसका मन सर्व कार्य से रहित हो प्रणव के ध्यान में लगा और सर्व दृश्य से शांत और मोह रूपी मल को त्याग कर प्रणव के विचार में लगा। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार उसने शब्द ब्रह्म प्रणव का उच्चार किया और पंचम भूमि का जो चित्त की अवस्था है उसको प्राप्त हुआ। भीतर बाहर के स्थूल सूक्ष्म पदार्थों और त्रिलोकी के सब संकल्पों को त्याग कर वह अक्षोभ रूप स्थित हुआ, जैसे चिंतामणि अपने प्रकाश में स्थित होती है। जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा अपने आप में स्थित होता है, जैसे मंदराचल के निकलने से क्षीर समुद्र स्थित होता है और मथने से रहित मंदराचल स्थित होता है, जैसे कुम्हार का चक्र फिरता फिरता ठहर जाता है, जैसे सूर्य के अस्त हुए जीवों की व्यवहार क्रिया ठहर जाती है, जैसे मेघ से रहित शरद काल का आकाश निर्मल होता है और प्रकाश तन से रहित होता है, तैसे ही फूरने से रहित उसका मन शांति को प्राप्त हुआ। प्रणव का ध्यान करके फिर उस वृत्ति के अंत को प्राप्त हुआ और फिर मंत्र को भी त्याग, जैसे महापुरुष क्रोध को त्यागते हैं तैसे ही वृत्ति को त्यागा। फिर तेज का प्रकाश उदय हुआ, उसको भी निमेश में त्यागा। आगे न तेज है न तम है, उसमें अभाव वृत्ति रहती है, उसको भी निमेश में त्यागा। तब जैसे नूतन बालक की जन्म से पदार्थ ज्ञान से रहित अवस्था होती है, तैसे ही अवस्था प्राप्त हुई। तब जो सत्ता मात्र आत्म तत्व सुषुप्ति पद है, उसका आश्रय किया और महाचल जो सुमेरु किनाई स्थिर अवस्था है, उसको प्राप्त हुआ। फिर केवल अचेतन चिन्मात्र तुरिया निरानंद आत्मपद में, जिसमें स्वरूप से भिन्न और आनंद नहीं प्राप्त हुआ, वह असत और सत रूप है, सर्व क्रिया से अतीत है, इस कारण असत है, और अनुभव रूप है, इस कारण सत्य रूप है। ऐसे अशब्द पद को वह प्राप्त हुआ जो परम शुद्ध पावन और सर्व भाव के भीतर प्राप्त है और सर्व भाव शब्द से रहित है। जिसको शून्यवादी शून्य, ब्रह्मवादी ब्रह्म, विज्ञानवादी विज्ञान, सांख्य मत वाले पुरुष ईश्वर, शैव, शिव, वैष्णव, विष्णु, शाक्त, परम शक्ति, कालवादी काल, आत्मवादी आत्मा और माध्यमिक माध्यम इत्यादि जो शास्त्रों वाले कहते हैं, सो एक परब्रह्म को ही कहते हैं, जो सर्वदा, सर्वकाल, सर्व प्रकार, सर्व में सर्वरूप है। ऐसे सर्वात्मा को वह मुनीश्वर प्राप्त हुआ। जिस आनंद समुद्र के बल से सबको आनंद होता है, ऐसे आत्म तत्व अनुभव रूप अपने आनंद को वह प्राप्त हुआ और वही रूप हो गया, जो अन्य और निरन्य, निरंजन, सर्व असर्व, अजर अमर, सबके आदि सकलंक निष्कलंक है। ऐसे आकाश से निर्मल पद को वीतहव्य मुनीश्वर प्राप्त हुआ।
हरि ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।